नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ वार्ता के बाद श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 4 समझौते किए हैं।
आज हम अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक तनाव के इस दौर में दोनों देश शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण में एक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का स्वागत करते हुए उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, अवसंरचना, डिजिटल सहयोग सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए अहम योजना निर्धारित की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कोरिया के बीच 27 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को अगले 4 वर्ष में दोगुना करने का लक्ष्य है। नई दिल्ली में भारत कोरिया व्यापार मंच में श्री गोयल ने इस यात्रा को संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
हम व्यापक आर्थिक साझेदारी को उन्नत करने के लिए तेजी से काम करने पर सहमत हुए हैं। इसके तहत हम कई गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करेंगे, दोनों देशों के बीच व्यापार करना आसान बनाएंगे और दोनों देशों में नए अवसर खोलेंगे ताकि हम एक अधिक संतुलित आर्थिक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ सकें।
टुवर्ड्स अ मोर बैलेंस्ड इकोनॉमिक पार्टनरशिप।
भारत का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह अमरीका का दौरा करेगा। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये जानकारी साझा की। उन्होंने इस दौरे को द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। तमिलनाडु में एक ही चरण के और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कल समाप्त होने वाले प्रचार से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के अंतिम प्रयास में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बीरभूम जिले में, जेपी नड्डा ने बांकुरा और पुरुलिया जिलों में प्रचार किया। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना के खरदाहा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर हमला किया। उधर तमिलनाडु में तेलुगु देशम पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री तथा टीडीपी के नेता किंजरापू राममोहन नायडू ने कोयम्बटूर में प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान की एचआरआरएल रिफाइनरी में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का उद्घाटन कार्यक्रम आज आग की घटना के कारण स्थगित कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर आज इस्लामाबाद में अनिश्चितता बनी हुई है। अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का संघर्ष विराम बुधवार को समाप्त होने वाला है। ईरान ने कहा कि अभी तक ये तय नहीं है कि ईरान अमरीका के साथ वार्ता के अगले दौर में भाग लेगा या नहीं। सरकार ने किसानों को समर्थन देने और घरेलू बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय उत्पादन अनुमानों, स्टॉक की उपलब्धता और मूल्य रुझानों की समीक्षा के बाद लिया गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।